ஜயோ விஷ்ணுபாத் பரமஹம்ச பரிவ்ராஜகாச்சாரிய அஸ்தோத்திர சுத்தி டிவைன் கிரேஸ் ஸ்ரீமத் பக்தி சித்தாந்த் சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மகாராஜ் பிரபுபாத் கி கிரந்தராஜ் ஸ்ரீமத் பாகவத் மகா புராண் கி நிதாய் கௌர் பிரமானந்தே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யா நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவிம் சரஸ்வதிம் வ்யாசம் ததோ ஜயமுதீரயேத். நஷ்ட ப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகீ. पहले पांच श्लोकों को दोहराएंगे. यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् वीशान्महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो திரௌண்யஸ்த்ரதஶ்சாஸ்ம ஹரேபிரக்ஷிதா விபதா சந்துதா சஸ்வத் தத்ர தத்ர ஜகத்குரோ பவதோ தர்ஷனம் யத் ஸ்யாத் அபுனர்பவ தர்ஷனம் ஜன்மைஸ்வர்யசுதஸ்ரீபீர் ஏதமான மதப்புமான் நைவார்ஹாத்யபிதாதும் வை த்வாமகிஞ்சன கோச்சரம் நமோகிஞ்சன வித்தாய நிவ்ருத்த குணவ்ருத்தயே ஆத்மா ராமாய சாந்தாய கைவல்ய பதயே நமஹ. அப்ப ஆஜ் கா ஸ்லோக் தோராயங்கே. வீஷான் மஹாக்னே புருஷாத தர்ஷனாத் அசத் சபாயா வனவாஸ கிருச்ரதஹ मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रताश्चास्म हरेभिरक्षिता वीशान् महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः மிருதே மிருதே அநேக மஹாரதாஸ்த்ரதோ த்ரௌண்யஸ்த்ரதஶ்சாஸ்ம ஹரேபிரக்ஷிதா.
Thank you.
मृदे मृदे अनेक महारथाश्रितो द्रौण्य अस्त्र तश्चास्म हरे विरक्षिता विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृष्णता मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रतो द्रौण्यास्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता माताजी विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृष्णता मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रतो द्रौण्य अस्त्रताश्चास्म हरे भी रक्षिता। अनुवाद और तात्पर्य प्रवचन एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। हे कृष्ण, आपने हमें विषमय भोजन से, महान अग्निकांड से, मनुष्य भक्षकों से, दूषित सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। वंदेयं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। नमाओं विष्णु पादाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारे प्रघात के अनुसार पहले हम प्रभुपाद द्वारा लिखित तात्पर्य के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके पश्चात प्रभुपाद द्वारा दिए गए प्रवचन। ये प्रथम स्कंद के अष्टम अध्याय का 25वां श्लोक है, 24वां श्लोक है। ये एक पूरी सूची है, पूरी लिस्ट है और विरला ही कोई मनुष्य होगा जिसके जीवन में इतने सारे संकट एक के बाद एक के बाद एक आए होंगे। एक सर्वसाधारण वृत्ति ऐसी होती है, हम प्रचार में भी उसको उपयोग में लाते होंगे कि भक्ति में क्यों आना चाहिए, भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, कि भाई भगवान आपको संकटों से बचाएंगे। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, कैसे मामूली लौकिक कवि उन्होंने जय जगदीश हरे तो जयदेव गोस्वामी कृत गीत गोविंद से लिया, दशावतार स्तोत्र से, लेकिन उसको इतना एक साधारण, इतना लौकिक एक प्राकृतिक रूप दिया उस भजन को कि भगवान की भक्ति करने से तन का कष्ट मिटता है, मन का कष्ट मिटता है, सुख संपत्ति घर आती है और क्या चाहिए फिर जीवन में। तो कोई व्यक्ति ये देखकर शायद कम से कम मन में निर्णय तो कर लिया होगा कि ये मेरे लिए नहीं है, ये भगवान की भक्ति अगर भगवान के भक्तों के जीवन में ऐसे संकट आते हैं। श्री प्रभुपाद ये तात्पर्य का आरंभ ही इसी प्रकार से करते हैं, द लिस्ट ऑफ डेंजरस इनकाउंटर्स इज सबमिटेड हियर इन। देवकी वॉज वंस पुट इन टू डिफिकल्टी बाय हर एनवियस ब्रदर, अदरवाइज शी वॉज वेल, बट कुंती देवी एंड हर सन्स वेर पुट इन टू वन डिफिकल्टी आफ्टर अनदर फॉर इयर्स एंड इयर्स टूगेदर। देवकी को एक ही बार कारावास में डाला गया और उनके पुत्रों की हत्या की गई और वो एक जीवन का चरण समाप्त होने के बाद और कोई जीवन में विशेष दुर्घटनाएं नहीं थी। लेकिन कुंती का जीवन देखेंगे तो कुंती के जीवन में तो ये एक के बाद एक के बाद एक संकट ही आते गए। They were put into trouble by Duryodhan and his party due to the kingdom and each and every time the sons of Kunti were saved by the Lord। हमेशा उनको संकट में डाला गया और भगवान कृष्ण की कृपा से ही केवल उनके पुत्र की रक्षा की गई। श्रील प्रभुपाद यहां पर एक संक्षिप्त तात्पर्य देते हैं और उनके प्रवचन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिक्षेप, एक फोकस डालते हैं इस पर, जिसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले ये लिस्ट से जाते हैं हम, विषाद। दुर्योधन का वैसे तो द्वेष सभी पांडव बंधुओं से था, लेकिन विशेष करके भीमसेन से ज्यादा था, क्योंकि भीमसेन में एक ऐसी प्रचंड शक्ति थी, उनके बल था उनके शरीर में कि एक बार वो, उनकी माता देख रही थी कि छोटे बालक थे, तभी वो सो रहे थे और फिसल के गिर गए शिला पर, तो उनकी माता का कलेजा तो पानी पानी हो गया कि क्या हुआ होगा। उन्होंने देखा तो शिला टूट गई थी, तो इतने से छोटे से बालक में ही अवस्था में ही वो इतना बल दिखाते थे। और फिर ये 100 कौरव बंधुओं के साथ खेलते समय, खेलने का तो खाली नाम था, भीम तो अपना शरीर शारीरिक बल से उनको हरेक को परास्त करते थे, यहां तक के बताया गया कि अगर वो सब एक पेड़ पर चढ़े तो भीमसेन केवल उस पेड़ को नीचे से हिलाकर सभी को नीचे गिराते थे। तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है गया, दुर्योधन का द्वेष दिन ब दिन बढ़ते गया और जो भी कुछ होता था वो अपने पिताजी से आके कहता था। धृतराष्ट्र एक ऐसा दुर्दैवी व्यक्तिमत्व है जिनको कुछ अपनी बुद्धि के द्वारा समझ में तो आता था लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा भी बहुत थी, एम्बिशन, कि मुझे अपने लिए कुछ चाहिए और मैं अंधा हूं, मैं कुछ नहीं पा सकता, कम से कम मेरा बेटा तो पा लेगा। लेकिन बेटा कौन सा है वो उन्होंने सोचा नहीं। तो दुर्योधन अगर कुछ करेगा और बाकी लोग समझाएंगे तो धृतराष्ट्र समझ सकते थे कि ये गलत है। लेकिन एंड लास्ट मोमेंट पर, जैसे कहते हैं, उनकी अपनी एक छोटी सी एम्बिशन, छोटी सी महत्वाकांक्षा ऊपर आती थी और उन्हें लगता था कि नहीं, कम से कम दुर्योधन तो मेरे लिए कुछ कर सकता है। और फिर वो वापस बैक टू नॉर्मल, वही मन में धारणा रखते थे कि ये सब लोग हमेशा दुर्योधन की बुराई क्यों देखते हैं, उन्होंने भी कुछ किया होगा और वो इतना बुरा नहीं है जितना लगता है उतना। तो ऐसे पूरा महाभारत में धृतराष्ट्र का मन ऐसे दोलायमान स्थिति में हमेशा दिखाया गया है। तो एक बार दुर्योधन ने धृतराष्ट्र की अनुमति से पांडवों को लेकर वन भोजन की योजना बनाई कि हम जाते हैं जरा सैर करेंगे वन में, नदी में सैर करेंगे, नौकायान करेंगे, और उसमें उसकी कुटिल योजना ऐसी थी कि भीमसेन को विष पिलाकर उसी नदी में फेंक देंगे। और वैसे किया उसने, जो मिठाई लाई गई थी उसमें इतना विष भरा था, उस विष से भीमसेन बेहोश हो गए और दुर्योधन ने उनको पक्के जाल से बांधकर नदी में ढकेल दिया। लेकिन हुआ क्या कि भीमसेन उस नदी में, गंगा जी की जो धारा जो थी, नीचे 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 गिरकर नागलोक में पहुंच गए और वहां पर जो नाग थे उन्होंने देखा कि अचानक ये कौन इतना बड़ा बलशाली व्यक्ति यहां पर आ पहुंचा है, वो सब नाग उनको डसने लगे। अब ये एक आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि विष विष को काटता है, तो नागों ने जो विष उनके शरीर में डाल दिया वो विष और ये मिठाई वाला विष, ये दोनों का कुछ न्यूट्रलाइज हो गया एक्शन और भीमसेन एकदम उनको जागृति तो हो ही गई लेकिन बहुत क्रोध भी आ गया और देखा कि उन्होंने, अरे मुझे किसी ने बांध के रखा है, तो केवल एक ही झटके से उन्होंने अपने सारे पांच को तोड़ दिया और फिर वो एक एक नाग को पकड़कर मारने लगे उधर। तो तभी एक दो नाग जो बचे वो तुरंत अपने राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि ये कोई महान योद्धा कोई आ गया है और वो सर्पों को ऐसे मार रहा है, आप कुछ कीजिए। तो वो जो राजा थे सर्पों के, वास्तविक ऐसे बताया गया कि वो भीमसेन के एक पूर्वज थे, मैंने ऐसे सुना है कि वो उनकी नानी के नाना थे। तो उन्होंने देखा कि तो अपना ही वंशज है, तो उन्होंने कहा अरे अरे इसे छोड़ो, इसे कुछ मत करना। फिर भीमसेन को पूछा गया कि आप यहां कैसे आ गए, तो उन्होंने बताया मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो खा रहा था और अचानक देखा कि मैं इधर पानी में हूं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अभी हमारे यहां आए हैं तो हमारा आतिथ्य सत्कार स्वीकार कीजिए। और उन्होंने उसे एक ऐसा रसायन पिलाया जिसे एक बार पीने से 1,000 हाथियों का बल आएगा और ऐसे 10 पॉट्स 10 कुंभ से वो पी लिए वो बोले अभी ठीक है। और जब वापस आ गए ऊपर, तब धृतराष्ट्र, दुर्योधन और बाकी कौरव, उनका तो मन इतना जलने लगा कि अरे ये तो मरता ही नहीं। तो ये था पहला इस श्लोक का जो वर्णन है, विषात महाग्नि, महाग्नि। कुछ वर्षों बाद दुर्योधन ने फिर से एक बार कहा कि पिताश्री हम इनको मारते हैं कैसे भी करके। अभी योजना क्या थी कि उनके लिए एक खास महल बनवाया गया जो ऊपर से दिखाई दे रहा था कि वो एकदम पक्का कंस्ट्रक्शन है, लेकिन उसके अंदर लाख जो कि ज्वालाग्राही है, थोड़ी सी जोत भी अगर उसके सामने लाए तो तुरंत सारा महल जल जाएगा। लेकिन विदुर जी को कैसे तैसे ये बात पता चल गई और उन्होंने, विदुर ये विद्वान तो थे ही और चतुर भी बहुत थे, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को जाते जाते बताया, ध्यान रखना कि शरीर ज्वालाग्राही है लेकिन आत्मा कभी जलती नहीं। अभी इसमें आप और हम क्या समझ सकते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को इतना समझ में आ गया कि जहां हम जा रहे हैं वहां को जलने के साथ कोई संबंधित घटना होने वाली है। तो वो वहां रहने लगे और इतनी उचित व्यवस्था की गई थी उनके लिए, खाना पीना विहार नौकर सब कुछ। एक दिन उन्होंने देखा कि वो जो दीवार है वो सब कैसी बनाई गई है, और तुरंत उनको समझ में आ गया कि ये सब अत्यंत ज्वालाग्राही पदार्थ से बनी हुई है। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि दुर्योधन हमारे इस घर को आग लगाकर हमको नष्ट करने से पहले हम ही यहां से भाग निकलते हैं, और केवल दैववश एक भिल्ल जाति की स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ वहां आई थी। ये केवल संयोग ही बताया जा सकता है। और उसी रात को सबसे पहले विदुर ने एक एक्सपर्ट टनल बनाने वाले आदमी को, भुयार बनाने वाले आदमी को भेजा था, जिससे उन्होंने उस बेडरूम से उनके दूर जंगल तक एक छोटा सा टनल बनवा दिया। और जिस दिन उन्होंने सोचा कि आज यहां का आखिरी दिन है हमारा, उस महल को आग लगा दी और वो जो स्त्री थी अपने 5 पुत्रों के साथ वहां आई थी, उसने मद्य पी लिया था, तो वो 5 पुत्र और उनकी मां सब बेहोश पड़े थे वहां पर, तो वो बेचारे वहां पर जलकर खाक हो गए। और सब लोगों ने देखा कि ये पूरा महल जल रहा है, तो अचानक आग आग आग, लेकिन वो तो ऐसे बस्ती से दूर था, ज्यादा कोई लोग वहां पे पहुंचे नहीं, और सब लोग हाय हाय करने लगे कि अरे हम जानते हैं यहां पर तो पांडव रह रहे हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं है, सारे द्वार हैं वो जल रहे हैं। जब ये बात हस्तिनापुर पहुंची तब धृतराष्ट्र दुर्योधन सब लोग वहां पर अत्यंत दुखी चेहरा करके कि आज बहुत दुखी हैं हम, इतना कष्ट हो रहा है बताने में कि हमारे प्रिय भाई पांडव बंधु और उनकी माता अचानक लगी आग में जल गए। मन में मन तो खुश थे वो, लेकिन बाहर से दुख प्रदर्शित कर रहे थे। तो साफ बात थी कि यहां पर 6 लाशें मिली है एकदम जलकर काली काली हुई और पूरा महल जल गया है। लेकिन यहां पे क्या हो गया वास्तविक, भीमसेन ने अपने भाइयों को अपने हाथों में लिया, अपनी मां को अपने कंधे पे लिया और उस टनल से बाहर निकलकर वो ऐसे वेग से दौड़े वो कि ऐसे बताया जाता है कि उनके उनके फोर्स से वृक्ष उन्मिलित उन्मूल हो रहे थे, टूट रहे थे, ये नहीं कि उनके स्पर्श से टूट रहे थे, केवल वो भाग रहे थे उधर से, तो उसके स्पीड से इतनी हवा तेजी से जा रही थी। और जिस स्थान पे वो महल था वहां से वो गए तो एकदम आज का जो एक चक्र है उस प्रदेश के आसपास आ गए वो। और जब भी ये भाई आपस में सोचते थे कि अभी ये बहुत हो गया, अभी ये कितना हम सहन करेंगे, ये लोग हैं कि हैवान है, क्या है हमारे लिए इतना एक के बाद एक संकट पैदा कर रहे हैं। लेकिन कुंती देवी उस समय भी उनसे कहती थी कि नहीं, जो भी हो रहा है भगवान तो हमको बचा रहे हैं ना। इस अग्नि के भय से जलने के भय से बचने के बाद उस वन में आ गए तो वहां पर कौन मिले, पुरुषाद। आद मतलब खाने वाला, पुरुष मतलब मनुष्य, पुरुषाद दर्शनात। वहां पे एक मनुष्य भक्षी राक्षस मिला जिसका नाम था हिडिम। वो भी एक रोचक कथा है। हिडिंब और हिडिंबा भाई बहन दोनों की टीम थी और दोनों नरभक्षी थे। और हिडिंबा वन में चर करके देखती थी कि कौन आया है, क्या आ गया है। और ये नरभक्षी लोग ऐसे हैं राक्षस, उनको गंध से पता चलता है कि यहां पर कोई मनुष्य है। तो ये पांच लोग आए यहां पर, पांच भाई और उनकी मां। तो हिडिंबा को पता चला कि यहां पर ये लोग हैं, वहां पर गई वो और देख रही थी और उनके शरीर को देखकर ही उसके लार टपकने लगी उसे कि इतना नरमास आज मिलने वाला है। और जैसे उसकी नजर, जैसे उसकी दृष्टि भीमसेन पे गई तो अचानक उसके मन में आ गया कि इसको मारना नहीं चाहिए, इसे खाएं क्यों, ये तो इतना सुंदर है, ये तो मुझे पति के रूप में वरण करना चाहिए। तो अचानक उसने अपनी माया शक्ति द्वारा अपने शरीर को एकदम सुंदर बना लिया और बाकी सारे सोए थे। भीमसेन खुद भागे और उनके भागने, बाकी चार लोगों ने केवल बैठने का काम किया लेकिन वो थक गए। उनके कंधे पर बैठकर और इतनी लंबी जर्नी से, यात्रा से, सब बोले अभी अभी बस करो भीमसेन, अभी और आगे मत जाना, हम थक गए। बोले ठीक है फिर आप यहां पे निद्रा करना। तो भाई और मां सो रही है और भीमसेन ने कहा कि मैं यहां जागा रहता हूं। ये है भीमसेन की शक्ति। तो उनको देखकर हिडिंबा एकदम सुंदर रूप संपन्न युवती का रूप धारण करके वहां पे आ गई और पूछने लगी कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। तो भीमसेन ने संक्षिप्त में बताया कि हम पांडव बंधु हैं और ये हमारी माता है, तो आप कहां जाएंगे और कहां रहेंगे, आपका घर कहां पे है। तो भीमसेन को समझ भी नहीं आ रहा है कि ये आधी रात गई, ये कोई बात करने का टाइम नहीं है यहां पर, और ये युवक कहां से आई है, मुझे ये सब प्रश्न क्यों पूछ रही है। और उधर हिडिंबासुर वो एकदम उतावील हो रहा, व्याकुल हो रहा था भूख से कि इस बहन को मैंने भेजा है और ये कुछ काम नहीं कर रही, अभी तक कुछ किसको लेके नहीं आई। तो वो जब देखने लगा कि ये पांच लोग बैठे हैं, पांच चार लोग सोए हैं, एक जागा है, एक और एक स्त्री है, और ये मेरी अपनी बहन ये मनुष्य रूप धारण करके क्या बात कर रही है इसके साथ, तब उसका क्रोध एकदम ऊपर आ गया। वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी बहन को दूषण देने लगा कि तू क्या कर रही है, तू पहले मैं इसे खाऊंगा बाद में तुझे भी खाऊंगा आज। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इनको छूना नहीं। तो बोले क्यों नहीं छूना, आज तक इतने सारे पशु पुरुष यहां पे आए थे, उनको तो हमने खा लिया, तो इसको ही क्यों नहीं छूना मुझे। बोले ये मुझे पति के रूप में चाहिए। बोला अरे छोड़ो पति वगैरह सब कुछ। और उसी समय वो जोर से चिल्लाने लगा तो भीमसेन ने कहा ए ये मेरे भाई यहां पर थके हुए सोए हैं, जो भी करना है करो लेकिन यहां पर शोर नहीं करना, उनकी निद्रा भंग हो जाएगी। तो जो भी वो भीमसेन कह रहे थे तो हिडिंबासुर तो और गुस्सा हो रहा था। तो फिर भीमसेन ने कहा कि अभी ये उनको एक सबक सिखाना चाहिए। उसने हिडिंबासुर को पकड़कर पहले दो तीन मुक्कों से ही उसको बेहोश कर दिया, उसको दूर घसीटते ले गए और वहां पर अपने मुक्कों से उसको इतना मारा कि उसका सारा शरीर एक से बॉल हो गया, मांस का बॉल। तो ये देखकर हिडिंबा तो पहचान गई कि ये अलौकिक शक्ति वाला पुरुष है। और फिर सुबह उठकर उसने कुंती देवी और बाकी बंधुओं से प्रार्थना की कि मैंने इनको पहले ही अपने पति के रूप में वरण किया है। तो फिर बाद में उन दोनों का विवाह हो गया और घटोत्कच का जन्म हुआ, वो कथा अलग है। असत सभाया, बाद में पांडव द्रौपदी को जीतकर आ गए वापस। देखिए ये महाभारत हम कभी कभी सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक फैमिली ग्रुप इतना अन्याय और एक के बाद इतने संकट कैसे कोई सहन कर सकता है। ये जो प्रभुपाद जी का लेक्चर है इसमें आज मैं पढ़ रहा था, जैसे मैं एक दो बार पढ़ाऊं इसको, लेकिन आज ये पहली बार एकदम वो मुद्दा समझ में आ गया कि ये इनके जीवन में क्यों ऐसे होता है। देखो क्या प्रॉपर यहां पर लिखते हैं, पूरे हमारे इस डिस्कशन का आगे भी चलेगा ये परपोर्ट और लेक्चर के लिए, ये एक सेंटेंस इसका सेंटर पॉइंट रहेगा। द पांडवज द सन्स ऑफ पांडु वेर ग्रेट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बट बिकॉज पीपल इन द मटेरियल वर्ल्ड आर इंटरेस्टेड इन मटेरियल थिंग्स द पांडवाज वेर पुट इन टू मेनी डेंजर्स। ध्यान से सुनिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। पांडव महान भक्त थे, पांडव शुद्ध भक्त थे, क्योंकि भौतिक जगत के लोगों को भौतिक विषय वस्तु में रुचि है इसलिए उनको ऐसे संकटों में डाला गया। ये बड़ा आश्चर्य करने वाला एक पॉइंट है, मुद्दा है। इसका मतलब यह हो गया कि भगवान के भक्त, विशुद्ध भक्त, उनके अगर आप हस्तरेखा देखेंगे या उनका जन्म चार्ट देखेंगे तो कोई संकट नहीं दिखाई देंगे उसमें। उनके जीवन में आए हुए संकट ये उनका प्रारब्ध कर्म नहीं है। मामूली व्यक्ति आप और हम अगर देखेंगे कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है तो कोई कहेगा ये साढ़े साथी है, साढ़े सात साल चलेगा ऐसे। हम कहेंगे बाप रे, ये जीवन में कितनी बार आती है? बोलो जितना लंबा जीवन उतने दो बार तीन बार भी आ सकती है, क्या मालूम। तो बाकी असत सभा वगैरह उसका वर्णन बड़ा है, हम अगले टाइम लेंगे उसको। जीवन में संकट आते क्यों हैं? प्रभुपाद जी ने इतनी सारे परपोर्ट्स में, इतने सारे तात्पर्य में, प्रवचनों में जो भी कुछ दिया है उससे एक बात, ये गीता की बात है, खाली गीता में इसका इतना विशद वर्णन नहीं आता। संकटों के लिए संस्कृत में शब्द है विपद, इसमें आता है विपद, इसके आगे आएगा विपद, विपदा संतुता शाश्वत। पद का अर्थ है हमारे चरण, फीट। मराठी हिंदी में पद का होता है अर्थ पोजिशन, है ना, ये पद या पदवी, डेजिग्नेशन। तो पद को अगर हम पोजिशन या स्थिति इस रूप में देखेंगे तो विपद का अर्थ होता है विरुद्ध पद। विपद का अर्थ होता है हम पोजिशन से गिर गए, अलग हो गया, कुछ ऑपोजिट हो गया। जैसे कोई व्यक्ति आसानी से आराम से खड़ा है, कोई कुर्सी पर चेयर पर बैठने गया तो यह उसका पद है, और अचानक वो प्लास्टिक की कुर्सी कभी कभी देखते हैं वो फोल्ड हो जाती है बीच में से, तो बैठने गए और गिर गए तो वो विपद हो गया। तो वैसे ही इस भौतिक जगत में हम आते हैं सुख भोगने के लिए, और यहां पर सुख तो मिलता नहीं, उल्टा विपदाएं आती है। तो ये संकट कौन भेजता है, संकट हमारे जीवन में पैदा कौन करता है? गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, अर्जुन मेरा किसी भी एक जीव के जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। उदासीनवद आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु, मैं उदासीनवत, उदासीन का अर्थ ये नहीं कि भगवान इनसेंसिटिव हैं या भगवान हमारे दुख को जान नहीं सकते। भगवान इस श्लोक में ये बात बताना चाहते हैं, किसी व्यक्ति ने बहुत भौतिक चीजों को प्राप्त किया तो भगवान खुश नहीं होते, और किसी को बहुत कुछ भौतिक नुकसान सहन करना पड़ा तो भगवान बोलते हैं कि इससे मुझे कुछ नहीं है। और वास्तविक ये पॉइंट यहां पर लिमिटेड न होकर भगवान हमको ये बताना चाहते हैं, आप भी इस तरह से उदासीनवत जीवन जीने का एक लाइफस्टाइल सीखो कि बहुत सारी भौतिक वस्तुएं आ गई तो भी उससे हर्ष भरित न होना, और बहुत सारे भौतिक संकट भी आए तो भी उससे दब न जाना। जैसे हम वो एक किसान की कहानी बताते हैं कि एक किसान की पत्नी मर गई, बच्चा छोटा था, एक पुत्र, तो सारे गांव वाले के कहने लगे, अरे रे 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 कितना बैड लक बैड लक। तो वो हमेशा कहता था गुड लक बैड लक, हु नोज, ये गुड लक है ये बैड लक है कौन जानता है। फिर एक दिन वो, फिर उसके जीवन में बहुत कष्ट आने लगा, पुत्र को भी पालन पोषण करना, खेती करना, सब करना। तो एक दिन उसका घोड़ा था वो चला गया, भाग गया कहीं पे। तो फिर सारे गांव वाले आ गए, अरे 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 आपके पास तो कुछ है नहीं, एक घोड़ा था और वो भी चला गया। तो वो यही कहता था कि गुड लक बैड लक कौन जानता है। 15 दिन बाद वो घोड़ा 10 जंगली घोड़ों को लेके आया अपने साथ, मालूम नहीं क्या उसने प्रचार किया उनको जाके या उनका संग उसको इतना अच्छा लगा, क्या पता। तो सारे गांव वाले कहने लगे, अरे आपका तो नसीब उजड़, ये एकदम उदित हो गया भाई, अभी तो आप घोड़ों को बेच सकते हैं, उनको क्या क्या नहीं कर सकते, आप तो आप इस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति आप ही बन जाओगे, कितना गुड लक है आपका। उसका उत्तर यही था, गुड लक बैड लक कौन जानता है। कुछ दिनों बाद उसका पुत्र, वो बाकी घोड़ों को ट्रेन करने से उनको बैठ कर रपट कर रहा था, तो अचानक एक घोड़ा एकदम जंगली तो था ही, वो तेजी से दौड़ने लगा और वो बच्चा उसका पुत्र गिर गया नीचे, उसके दोनों टांगे टूट गई। फिर सब गांव वाले के कहने लगे, अरे रे 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 इतना अच्छा चांस था सुंदर, अभी इसकी शादी करते थे, फिर उसकी बहू आती थी, फिर कितना अच्छा घर होता था आपका, और अभी तो ये टूट गया, इसकी टांग टूट गई, तो अभी आपको अपना बुढ़ापे में खुद का ध्यान रखना है, फिर बेटे के ऊपर ध्यान रखना है, फिर इतना बड़ा बिजनेस बढ़ रहा है अभी घोड़े का, ये कौन संभालेगा, कितना बैड लक। तो उसका उत्तर वही था, गुड लक बैड लक कौन जानता। ऐसे कुछ वर्ष बीत गए और उस राजा ने, उस राज्य के राजा ने युद्ध घोषित किया और गवर्नमेंट के एजेंट लोग आए और सारे युवकों को पकड़कर आर्मी में रिक्रूट किया, इनके घर में भी आए, देखा तो ये एक जवान लड़का बैठा है, तो बोला लेकिन इसके तो टांगे है ही नहीं, बोला ये क्या काम का हमारे। तो बाकी सारे युवकों को लेके गए, इतना भीषण युद्ध हो गया, लगभग कोई जिंदा वापस नहीं आया। फिर से सारे गांव वाले आके कहने लगे, अरे रे रे कितना गुड लगा आपका, कम से कम आपका बेटा तो है, भले अपाइज है, हैंडीकैप्ड है। इनका उत्तर वही था, कौन जाने जो भी कुछ हो रहा है वो, से कौन जानता कि कैसे मैं कह सकता हूं कि आज जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए बुरा है। वेदों को पढ़कर, वेद का मतलब आज अगर 21st सेंचुरी से देखा जाएगा तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि केवल प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़कर हम वेद क्या है आसानी से जान सकते हैं। एक डिवोटी जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि हम वेस्टर्न बड़े बड़े फिलोसोफर लोगों से बात करते हैं और उनको हम एक एक आपके सिंपल परपोर्ट्स में से एक कोई पॉइंट बता दिया तो वो कहते हैं कि हरी, ऐसे तो हमने कभी सोचा नहीं था, ये तो हम जानते नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इन टूडेज टाइम्स इफ समबडी वॉन्ट्स टू क्लेम टू बी एन इंटेलेक्चुअल ही शुड रीड माई बुक्स। आज की तारीख में इस 21st सेंचुरी 21वीं शताब्दी में अगर किसी को अपने आप को विचारवंत इंटेलेक्चुअल घोषित करना है तो मेरे ग्रंथ पढ़ने के बजाय अगर बाकी सब कुछ पढ़ लिया तो भी यू विल बी लैकिंग समथिंग, कुछ कमी रहेगी। एक जैसे प्रभुपाद कहते कि ये मेरे ग्रंथ है ही नहीं, ये नॉलेज मेरा नहीं है। ये प्रभुपाद बताते थे, एक बार एक रिपोर्टर ने कहा कि स्वामी जी ये सब आप सोचते कैसे है ये सब, तो उन्होंने कहा ये मेरा नहीं ज्ञान, ये परंपरा से आया हुआ ज्ञान है जो मैं केवल दे रहा हूं। तो ये एक फंडामेंटल बात है किसी के भी जीवन की। एक व्यक्ति है जिनके साथ अभी हम थोड़ा सा मतलब उनको भक्ति में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात हम किसी को नहीं ला सकते, अपने आप को भी लाना इतना मुश्किल है, लेकिन एक बात ऐसे समझ सकते हैं, केवल मॉर्निंग वॉक करने के लिए एक व्यक्ति बाहर निकलते थे और उनको एक दूसरे व्यक्ति मिले, उन्होंने पूछा आप कहाँ जाते हैं इतने सुबह, बोले हम मंदिर जाते हैं। समय एक ही था, हमारी मंगल आरती चौपाटी में 5 बजे की होती है, तो 4:45 के आसपास वो मंगल आरती अपना मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। उनको बताया गया कि आप मंदिर आओ, यहाँ पर मंगल आरती है वगैरह वगैरह। तो एक दिन उन्होंने सोचा चलो देख लेते हैं क्या ये लोग करते हैं मंगल आरती मंगल आरती, तो उनको अच्छा लगा और एक के बाद एक के बाद एक फिर वो भागवतम क्लास अटेंड करने लगे, फिर घर से एक भागवत ले लिया, फिर श्लोक गाने लगे। एक साल तक उनका ये प्रोग्रेस चार्ट जो है वो एकदम ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। फिर कोई सन्यासी आए थे मंदिर में, बोले महाराज आप हमारे घर चलिए, महाराज को अपने घर ले गए और एक दिन अचानक गायब। तो बस में मैं जा रहा था तो मुझे दिखा उन्होंने और मैंने कहा अरे ये तो वो प्रभु जी हैं। तो उन्होंने ऐसे देखा, थोड़ा अनदेखा किया, मैं सोचा कुछ तो गड़बड़ है। फिर उनकी दुकान में गए, पूछा क्या हो गया, बोले अरे ये कृष्ण की उपासना करने से मेरे जीवन में एक के बाद एक केवल संकट ही आने लगे हैं अभी। बोले क्या संकट है, बोले हमारे 2 लड़के हैं और दोनों लड़कों ने मेरा कुछ इंसल्ट किया, ये किया वो किया, फिर कुछ प्रॉपर्टी का मामला था, पूरा लॉस हो गया, फिर अपनी सेहत वो खराब हो गई, फिर बिजनेस देखो इसमें ये भी कुछ नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा अरे इसके पहले मैं कितना खुश था मैं, और ऐसा भी नहीं कि मैंने भगवान से कुछ मांगा था कि मुझे भक्ति दो करके, ये ऐसे ही कोई लोग आके कहने लगे कि आप मंगल आरती आ जाओ और मैं आने लगा। तो अभी तो मुझे पता चला है कि ये सब मुझे नहीं करना। तो फिर उनको अभी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हम छोटे हैं, हमको क्या समझाएंगे कि नहीं 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 ये सब आपके लिए अच्छा ही होगा। और वास्तविक हम यही सोचते हैं कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान जैसे भक्ति यानी कोई दुकान है और भगवान वहां के सेल्समैन है और हम लोगों को पकड़कर दुकान में ला रहे कि यहां का माल अच्छा है आप लीजिए यहां पर, और वहां लेके जाएं तो वो सेल्समैन उनको 2-3 गालियां सुनाता है, वो कह रहे हैं कि ये महंगा चीज है, बोले क्या महंगा है कभी खरीदा है आपने, कभी पैसे थे आपके पास। तो हम सोचते हैं कि अरे इतने लोगों को कष्ट से हम प्रचार कर करके लेके आते हैं तो भगवान को उनको अगर कुछ दे दिया 2-3 करोड़ रुपए तो क्या जाता है उनका, है कि नहीं। भगवान तो माधव हैं, लक्ष्मी के पति हैं, कोई कह रहा है कि नहीं, जब तक ये मेरा बिजनेस नहीं सुधरता तब तक मैं नहीं आऊंगा भक्ति में, या जब तक मेरा ये अर्थराइटिस ठीक नहीं होता तब तक मैं नहीं आऊंगा। तो कभी कभी प्रचार सोचते हैं कि दे दो इनको, क्या है, कम से कम भक्त बन जाएगा, अच्छा आपका भी नाम हो जाएगा, हमारा भी तकलीफ कम हो जाएगा। तो हमारे मन में भी ये है कि अगर भक्ति में आके संकट आए, संकट होने नहीं चाहिए यहां पर कोई भी। वास्तविक भक्तों के ऊपर जो भी बीतती है, ये आप और हम तो कभी कभी सोचते हैं कि मैं बहुत सेंसिटिव हूं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमारा हमारी सेंसिटिव भी क्या है। भीष्म पितामह जैसे आजीवन ब्रह्मचारी अपने गुरु को भी धनुर्वेद में परास्त करने वाले, उसने शक्ति रखने वाले, पूरा जीवन केवल एक ही उद्देश्य उन्होंने जिया है। और उन्होंने जब ये कुंती देवी की प्रार्थना, केवल कुंती की अपनी प्रार्थना नहीं है, बाकी सब लोग जानते थे, भीष्म देव तो खास करके बार 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 इसको मन में लाते थे कि ये पांडव जैसे धार्मिक लोगों के जीवन पर ऐसे, उनके जीवन में ऐसे होता है, और उनकी आंखों से आंसू आने लगे कि ये समझ में नहीं आता क्या है ये। तो ये वास्तविक एक गांभीर्य से देखने वाली, देखने योग्य बात है। तो सबसे पहले संकट बद्ध जीव के जीवन में जो आते हैं वो केवल उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही आते हैं। ऐसे नहीं कि हमको, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, हमारे पास कोई योजना नहीं है इसका सामना करने की। सबसे प्रथम द फर्स्ट स्टेप, आपका जीवन कितना भी सुखी हो या जीवन कितना भी संकटमय हो, फर्स्ट स्टेप यह है कि भगवान के सम्मुख जाकर मंदिर में या अपने घर में, या अगर मंदिर में भी नहीं जा सकते और घर में भी नहीं है और सामने कुछ भी, तो केवल आंखें बंद करके मन ही मन में तो भगवान के रूप का ध्यान कर सकते हैं। और एक प्रामाणिक प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि भगवान आज से मैं आपका हूं। रामायण में भगवान रामचंद्र कहते हैं तव अस्मि इति याचते, ये एक याचना भगवान को कॉन्फिडेंस दिलाता है कि ये व्यक्ति सीरियस है। अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। जो भी व्यक्ति, प्रभुपाद जी से कहते हैं कि सरेंडर्ड सोल, अब ये सरेंडर्ड का मतलब हम कहते हैं कि जब दीक्षा लिया तभी किया ना सरेंडर, तभी किया था, तो सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि कभी एक बार मैंने किया था। भले सरेंडर अभी थोड़ा नहीं लगेगा कि पूरा सरेंडर नहीं हुआ, पूरी शरणागति नहीं है, लेकिन ये एक फ्लो है। सरेंडर इज ए प्रोसेस, इट इज नॉट ए डेस्टिनेशन। शरणागति इसमें गति है, शब्द भी ऐसे रचना की है, शरणागति। जैसे अगर आप कहेंगे ये गंगा का पानी, आपने जिसको दिखाया वो पानी चला गया आगे, है कि नहीं। जब हम कह रहे हैं कि ये पानी कितना नीला है, तब तक जिस पानी को आपने नीला दिखा था वो आगे चला गया 200 फुट, लेकिन पानी बह रहा है, प्रवाह है उसमें, इसलिए हम दिखाते हैं वो चीज वो है नहीं, तो भी वो कंटिन्यूसली फ्लोइंग। तो वैसे शरणागति की भावना को भी ये एक डे टू डे प्रोसेस है। इसका आरंभ होता है भगवान को ये कहने से कि आज से मैं आपका हूं। आप जिस स्थिति में रखना चाहेंगे उस स्थिति में रखिए। एक ही बात की केवल प्रार्थना है कि आपका विस्मरण ना होने पाए। तो भगवान देखते हैं कि अगर किसी को सुख संपत्ति शारीरिक सुविधा ये देकर अगर उसे मेरा विस्मरण हो तो उसके लिए अच्छा नहीं है। जैसे डॉक्टर्स हैं, वो एक पेशेंट को देख रहे हैं और मरीज के रिश्तेदार है वो देख रहे हैं, और अचानक उसको फीवर आ गया, ज्वर, और डॉक्टर तो खुश हो गया, बोले ठीक है, मतलब मेडिसिन काम कर रहा है। और लोग कहने लगे अरे रे तो बुखार चढ़ रहा है, और बोले शांत रहो, ये एक नहीं और दो दिन बुखार चढ़ेगा, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही बुखार का मतलब क्या है, शरीर इतना गर्म हो गया है कि इससे फिर और एक्टिविटी नहीं हो सकती, ज्यादा उसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है और कुछ तो काम चल रहा है अंदर। जैसे म्युनिसिपल वाले, म्युनिसिपल वर्कर लोग अगर किसी रास्ते में काम करना है तो वहां पर एक अवरोध खड़ा करते हैं, रास्ता बंद, काम चालू है। ठीक उसी तरह से अगर किसी एक भक्ति में, ये सेकंड स्टेप है, मतलब पहले भगवान के साथ ये प्रार्थना करने के बाद अगर हम कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं और बहुत कठोर परिश्रम करने के बाद ही वो नहीं मिल रही है तो समझने का ये भगवान ने रास्ता बंद कर रखा है, वहां पर कुछ काम चालू है। जिस उचित समय हमारे लिए वो चीज प्राप्त करना सुलभ रहेगा, वो हमारे लिए ठीक रहेगा, वही भगवान वही चीज हमको बिना सायास, बिना कुछ प्रयत्न किए ऐसे प्रदान करेंगे, ये लो। कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो ये बहुत लंबा डिस्कशन चलेगा, ये जीवन में संकट क्यों आते हैं और ये खास करके ये प्रभुपाद का प्रपोर्ट। तो आज हमने देखा कुछ संकटों के ऊपर, हमने वर्णन, उनका वर्णन सुना। तो प्रभुपाद जी का ये सबसे सेंटर पॉइंट ये है कि पांडवों को इसलिए संकटों में डाला गया ताकि उनके उदाहरण से बाकी भौतिकवादी, भोगवादी लोग समझ सकें कि जीवन, भौतिक जीवन कोई पिकनिक नहीं है, यहाँ पर संकट आएंगे और हमारे संकट जो हैं वो हमारा प्रारब्ध कर्म है। इनके जीवन में जो संकट है वो उनका प्रारब्ध कर्म नहीं है। फर्स्ट स्टेप, इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, फिर सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप, पहला चरण यह है कि भगवान के पास जाकर ये गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना कि आप मुझे स्वीकार कीजिए। एक बार आपने, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण ने किसी को स्वीकार किया तो उसकी सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है। जैसे अगर किसी ने गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, कोई कह रहा है कि आप नहीं है, प्रूफ लाओ, डॉक्यूमेंट्स लाओ, एक बार उसने डॉक्यूमेंट पैदा किए तो उसका सारा मेडिकल, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड सब कुछ देना पड़ता है फिर। तो वैसे ही एक बार जीव अपने आप को कृष्णदास के रूप में सर्टिफिकेट लाता है कि हम कृष्णदास हैं, तो फिर वो माया के चंगुल से, माया के क्लचेस से बच सकता है। इसकी आगे की चर्चा हम आगे करेंगे, अभी यहां पर ही विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न है या कोई कमेंट्स? इनका प्रश्न है कि, हिंदी में चलेगा ना, इनका प्रश्न है कि मामूली व्यक्ति तो अपने कर्म के अनुसार प्रारब्ध कर्म भोगता है, तो सद्गुरु, शुद्ध भक्त या गुरु क्यों कष्ट में पड़ते हैं या उनके ऊपर संकट क्यों आते हैं? जैसे कि आपने बताया, श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार बताया था कि क्योंकि मेरे शिष्य नियम को पालन नहीं कर रहे हैं, जाप नहीं कर रहे हैं या चार नियम को पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरी बीमारी जो है वो ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि इनका कर्म मुझे लेना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये बात सही है कि गुरु अपने शिष्यों के कर्म को लेते हैं, लेकिन अर्थात ये बात हमको अलग अलग एंगल से समझनी चाहिए। एक ऐसा धर्म है जहां पर लोगों ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है कि गुरु मेरे सारे कर्म ले लेंगे और मैं वही कर्मों को वापस करते रहूंगा, तो भले गुरु भगवान से कहेंगे कि ठीक है मैंने इसको स्वीकार किया है, अब ये व्यक्ति भौतिक क्लेशों से मुक्त होने तक इसके सारे कर्म मैं अपने ऊपर लूंगा। लेकिन कभी कभी कृष्ण बीच में आकर कहेंगे कि नहीं, मतलब गुरु की कृपा का कोई लिमिट नहीं है लेकिन कृष्णा के टॉलरेंस का लिमिट हो सकता है। तो भगवान, क्योंकि भगवान तो सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, वो उस व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार कुछ दे भी सकते हैं। तो ये भी शास्त्र में बताया गया है कि गुरु भले शुद्ध भक्त न भी हो, गुरु भले भगवान का नित्य पार्षद न भी हो, क्योंकि वो परंपरा से जुड़ा हुआ है, इसलिए परंपरा के अनुसार वो अपने शिष्यों का कर्म जो लेता है तो उसके पूर्वाचार्य जो नित्य पार्षद हो सकते हैं वो उस गुरु को मदद करते हैं। तो दोनों बातें सच है। तो शिष्यों को खास करके सावधान रहना चाहिए कि कम से कम अपने कर्मों का फल जो है वो अपने गुरु को भोगना ना पड़े। एनी अदर क्वेश्चन? कहने का तात्पर्य ऐसा है कि गुरु भगवान के एजेंट होने के नाते, नित्यानंद प्रभु के एक प्रतिनिधि होने के नाते, उनकी भावना ऐसी होती है कि मैं सबसे पतित हूं तो मैं कैसे तुमको आपको दूषण दे सकता हूं, इसलिए आपका रक्षण करना, आपको आपकी सहायता करना ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन भगवान, क्योंकि भगवान का ब्रह्म परमात्मा भगवान इस तरह से तीन इसमें है, परमात्मा के रूप में भगवान जितना किया उतना ही फल देंगे, अगर कुछ गलत किया तो उसका गलत फल भी देंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान अपनी कृपा कम करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसके कर्तृत्व या उसके कार्य के फलस्वरूप वो भगवान की कृपा से अपने आप को तोड़ देता है। जैसे श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य ने कहा कि अगर मेरा उद्धार नहीं हो जाएगा और अगले जन्म में मुझे फिर एक बार जन्म लेना पड़ेगा तो क्या आप वापस आओगे? तो प्रभुपाद ने कहा मुझे तो आना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भगवान के साथ कि इसका उद्धार करने तक मैं यहां पर रहूंगा। फिर प्रभुपाद ने कहा लेकिन ऐसे मुझे करने पर जोर मत करना, ट्राई टू एक्ट इन सच ए वे दैट इज जस्ट लाइफ वन लाइफ टाइम यू गो बैक टू गॉड इट। तो श्री प्रभुपाद ने इस ऑफकोर्स ये सिंसियर डिसाइपल के लिए बताया गया है। जैसे कोई व्यक्ति ने अगर जान बूझ कर कृपा की अवहेलना की है, जैसे आप किसी को कोई पानी कह रहा है, आप कह रहे हैं ठीक है ग्लास लाओ, जैसे ग्लास भर दिया वो ग्लास उल्टा कर रहा है, फिर प्यास लगी पानी लाओ, कुछ देर के बाद तो आप कहेंगे कि मैं पानी तो दे रहा हूं ना, आप कम से कम ग्लास तो ठीक से तो रखो कम से कम, और क्या आपको करना है। तो इस दृष्टिकोण से यह बताया जाता है कि भगवान कभी कभी बीच में इंटरजेक्ट कर सकते हैं कि बहुत हो गया, ये व्यक्ति इस कृपा के लायक नहीं है, उसे थोड़ा ट्रीटमेंट चाहिए माया के पास से। फिर जब उसे पता चलेगा कि ये क्या मिल रहा था मुझे, थोड़े शोधन के बाद फिर वापस वो भक्ति मार्ग में आ सकता है। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की।